सीखना है। जो भी विरक्त बाबा जी हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, घूमते हैं तो कहीं कहीं स्त्रियां प्रणाम करने के लिए आती हैं, तो पहले से ही घोषणा रहनी चाहिए कि भाई कोई युवती स्त्री चरण छूकर प्रणाम नहीं कर सकती। तो हमने सुना है कि त्रिदंडी स्वामी नहीं कभी स्पर्श करने हैं। हाँ, तो ये सन्यासी का था काठ की स्त्री हुई पायल से फिर हाथ से और जीवित ज्योति का स्पर्श कोई कैसे करेगा। आजकल तो सन्यासी लोग भी प्रणाम करने वाली स्त्रियों की पीठ थपथपाया करते हैं। भाव वाली समाचार चलता है, समाचार पूछते गेरुआ कपड़ा पहने। ये शास्त्र है श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम प्रमाण मनो देखना चाहिए क्या हो जाएगा अगर स्पर्श कर देगा तो पैर से भी। तो स्पर्शन करी व बद्धेता, अगर स्पर्श करेगा तो जैसे हाथी बांधा जाता है गर्त में गिरा करके, वैसे ये भी बांधा जाएगा मारा जाएगा। करी इव बद्ध, करी कर, कर का अर्थ सूढ़ है, और करी माने सूढ़ वाला, कर वाला। ये सूढ़ वाला बांधा जाता है इतना बलवान जीव, उस तरह से सन्यासी एक जगह बंध जाएगा, गिर जाएगा, हो सकता है जान से भी मारा जाए। स्पर्शन करी व बद्धे तो करिंडिया अंग संग, जैसे करिणी के साथ अंग संग के कारण, हाथ हथनी का संग करने के कारण हाथी मारा जाता है, गिरता है उस गड्ढे में जिस गड्ढे का मैं वर्णन किया, उतना बलवान जीव गड्ढे में गिरा करके कई दिन उपवास करा करके कमजोर बना करके और तब लाया जाता है, और एक साधारण महावत, एक साधारण आदमी उसके सिर पर अंकुश मार मार करके अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है। हाथी में कितना बल है, वो आदमी कितना कमजोर है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार उसको चलाता है। ऐसे ही कोई सन्यासी किसी स्त्री के बस में अगर हुआ, गिरा, तो फिर वो उस पर अंकुश चलेगा। नार दिवस नर सकल गोसाई नाच नट मर कट की नहीं, उसे नाचना पड़ेगा स्त्री के अनुसार, और इसके साथ ही साथ वो स्त्री वाले उसको जान से मार खत्म कर। इसीलिए भिक्षुकों को, मधुकरी करने वालों को, सन्यासियों को चाहिए कि वे कभी भी स्त्री का स्पर्श न करें, और स्पर्श एक उपलक्षण है, वे यथाशक्ति दर्शन न करें, उनके साथ बातचीत न करें, नहीं तो बहुत कुछ ऐसा है कि गिर जाए। नाधिगच्छेत् स्त्रियं प्राज्ञः कहिचिन् मृत्युमात्मनः बलाधिकैः सहन्यता गजैरन्ये गजजता। ये तो सन्यासी को शिक्षा दी गई, अब किसी भी व्यक्ति को शिक्षा दे रहे। नाधिगच्छेत् स्त्रियं प्राज्ञः कहिचिन् मृत्युमात्मनः, कोई भी प्राज्ञ, कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसको जानना चाहिए कि स्त्री जो है वह अपनी मृत्यु है। विशेष करके यहां पर स्त्री के लिए बात कही गई है, और अपनी स्त्री के साथ भी कुछ प्रतिशत की बात लागू होगी, लेकिन पर स्त्री के लिए बात कही जा रही है। जो पर स्त्री है, दूसरे की स्त्री है, उसको अपनी मृत्यु के रूप में देखना चाहिए बुद्धिमान पुरुष को, और ऐसी स्त्री का कभी संग नहीं करना चाहिए। नाधिगच्छेत् स्त्रियं प्राज्ञः कहिचिन् मृत्युमात्मनः, कहिचिन् किसी भी स्थिति में, कितनी भी काम वासना हो, कोई भी चांस हो उसका संग का, ये भी जानता है कि कोई नहीं जानेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी भी हालत में उसे दूसरे की स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बलाधिकैः सहन्यता, इससे अधिक बल वाला कोई आदमी होगा तो वह उसका वध कर देगा, और वह उस स्त्री को भोगना चाहेगा, और वह स्त्री ही मरवा देगी पूर्व पुरुष को। ऐसा संसार में सुना गया है कि अपनी स्त्री भी जार पुरुषों को बुला करके अपने पति को मरवाती है। तो स्त्रियों को भोगने की सहज प्रवृत्ति है पुरुषों में, तो अतः किसी को अगर कोई भोगना चाहे, किसी स्त्री का संग करना चाहे तो मारा जाएगा। बलाधिकई गजय, जैसे कोई हाथी किसी हाथी का संग करना चाहता है तो दूसरे उससे बलवान हाथी उसको मार देते हैं, जान से मार देते हैं। इधर भी हम लोग सार भाई सब देखते हैं, संग करने के लिए आपस में बहुत लड़ाई करते हैं, कुत्ता भी बहुत लड़ाई करते हैं, थोड़े से संग के लिए बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। तो इस तरह से अगर यह प्रवृत्ति ही ना प्राग्ञ अगर बुद्धिमान है तो समझेगा कि अरे ये तुच्छ सुख है, स्त्री के साथ में कोई सुख नहीं है, संग सुख नहीं है और उल्टे बल्कि अपनी मृत्यु है, इस तरह से उसे बचना चाहिए। प्राज्ञ स्त्रीय न अधिगच्छे, नहीं जाए, नहीं तो कृष्ण भावना आदि से तो गिरेगा ही, जान से भी हाथ धो डालेगा, मृत्यु स्वरूप हाथी को मरते भी बलवान हाथियों के द्वारा देखा गया है। इतना युद्ध करते हैं हाथी आपस में कि वे मार देते हैं, कई हाथी मिलकर एक हाथी को मार देते हैं गिराकर। तो एक से एक बलवान आदमी है इस जगत में, एक से एक धनवान आदमी है, इसीलिए किसी पर स्त्री के संग की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अगर परिस्थिति इस तरह की है तो आज मान लीजिए आपको लुब्ध कर रही है तो कल उसे दूसरा सुविधा मिलेगी तो दूसरों का टेस्ट करेगी, तो हो जाएगा कल झगड़ा, इस पर मरण निश्चित है। स्त्रियों के लिए कई लोग मरे हैं परिस्थिति के चलते, खास करके सीता के कारण कई लाख लोग लंका में मारे गए, क्योंकि रावण अपने को बहुत बड़ा विद्वान मानता, लेकिन परिस्त्री के साथ वो ये चेष्टा करना चाहा, मारा गया। नहीं तो यह कार्य यदि रावण नहीं किया होता तो उसको मारना बहुत कठिन था, भगवान भी माफ कर दिया होता, लेकिन मारा गया। बहुत ऐसा इतिहास है, बहुत लोग मारे जाते हैं। यह हाथी से शिक्षा मिलती है और अब मधुरा से शिक्षा लेकर के हम विराम देते हैं। न देयम् नोपभोग्यम् च लुब्धैर्जद्दुःख संचितम् भुङ्क्ते तदपि तच्चान्यो मधुवे वार्थविन् मधु। स्व उद्यमं विना त्याग भोग विहीनो धन संचय परगामी भवति इत्यत्र मधुगा गुरुरित्या। अब सबके लिए शिक्षा है, केवल सन्यासी के लिए नहीं। कोई व्यक्ति अगर ऐसे धन का संचय करता है जो धन न तो दान दिया और न भोगा, तो दान और भोग मतलब घर द्वार नहीं बनाया और भी खाया पिया बढ़िया से नहीं, घुमा फिरा नहीं, तीर्थ आदि नहीं किया, उसको भोगहीन धन कहते। कुछ लोग धन केवल इकट्ठा करते हैं तो खर्च नहीं करते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत से ऐसे क्रीपर होते हैं संसार में, धन इकट्ठा करते हैं, खाते भी अच्छे से नहीं है, पहनते भी नहीं है, दान देने की बात तो और दूर। तो दान देना, भगवान की सेवा में दे देना, साधु ब्राह्मण को देना, गरीब को देना, ये तो उत्तम गति है दान की। ऐसा दान, ऐसा धन परलोक में कई गुना होकर के मिलता है, इसको दान कहते हैं। लेकिन धन का दान भी नहीं किया, अच्छा चलो सेकेंड जो गति है भोग, घर द्वार बनाना, स्वजन को देना, खाना पीना घूमना, ये भी नहीं किया, न दान किया न भोग किया। तो ऐसे धन का संचय करने वाला, ऐसा धन जो संचय करता है तो वह धन एक दिन दूसरे के हाथ में जाता है, बटोरा हुआ धन दूसरा भोगता है। इस विषय में मधुहा गुरु है, मधुहा छिनती थी, मधु को जो छीन ले हरण कर ले उसको मधु कहते। मधु कमाती है मधुमक्खियां, कहां कहां से थोड़ा थोड़ा कितना कष्ट करके उपवास करके कमाती है, मधु इकट्ठा करती है, उस समय वो कुछ खाती नहीं है। कितना ईमानदार है मधुमक्खियां, ढो ढो करके ला करके जमा करती है और इस आशा से कि एक दिन हम लोग खाएंगे, संचय करती है, लेकिन उसको मधुहा ले लेता है, मधुहा मधु छुड़ाने वाला। जितने लोग मधु छुड़ाते हैं उसमें से मधु लगाने वाले थोड़े कोई है, एक भी आदमी मधु लगाया नहीं होगा, लेकिन छुड़ाने में तो हम सोचते हैं कि पुराने आदमियों में कोई ऐसा नहीं होगा जो मधु न छुड़ाया। कितने लोग मधु छुड़ाए हैं या मधु छुड़ाते हुए देखे हैं, हाथ उठाए। मध छुड़ाते समय कितने लोग देखे हैं? काफी लोग देखे हैं। ठीक है, तो दूसरे का धन लिए, दूसरा बेचारा मेहनत कर करके रखा है कि हम इसको पिएंगे खाएंगे तब तक दूसरा छुड़ा कर लेंगे। यही गति होती है संचय करने वालों को। तो जो धन मिले उसे या तो दान दे देना चाहिए और नहीं तो खूब भोगना चाहिए, खाना पीना ये उसमें मतलब उसको लगाना चाहिए, नहीं तो परगामी भवती, परगामी मतलब दूसरे के पास धन चला जाएगा। नहीं भोगेगा तब तो कुछ ठीक है, क्यों मरेगा? जीवित होगा खाना कि मरेगा क्या? नहीं, उत्तम गति दान है। भानु सत्ता हो रहा है, खूब खिलाओ पिलाओ, दान है। अगर ऐसा नहीं कर सका तो चलो तुम ही खाओ, और वो भी नहीं किया बटोरा है तब तो दूसरे लोग ले ही जाएंगे, चाहे दमाद ले जाएगा, चाहे सरकार ले जाएगी, चाहे चोर ले जाएगा। हाँ, दमाद ले जाएगा। और तो दमाद मान लीजिए जिसके पास केवल लड़की है, लड़का नहीं हुआ है, तो दामाद लोग आज से ही जोड़ते रहते हैं कितना पैसा कहाँ जमा किया है, कितना खेत है, खेत में बेचने पावे कहीं देने न पावे, वो तो मधुआ लगे हुए। कोई भी सबके पास मधुआ है, अगर कोई गुरु है पैसा रखा है तो शिष्य है, उसमें से कुछ शिष्य ऐसे हैं जो लगे हुए हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जान मार कर ले लेते हैं गुरु का। एक नंदगांव की घटना को बता रहा हूँ, गौड़ी मठ है सनातन भजन कुटी के पास, वहां एक शिष्य रहता था, एक गुरु जी रहते थे। गुरु जी बहुत वृद्ध हो गए थे, गौड़ी साथ बाबा जी। तो एक दिन रात में हल्ला किया शिष्य कि हमारे गुरु जी को डाकू मार दी, ये किए वो किए, और कुछ बक्सा अक्सा ले जाकर बाहर फेंक दिया, दर्व कर दिया, वो कर दिया। तो बक्सा फेंका भर था, तोड़ा नहीं था, उसमें जो पैसा था उसी में था। उजाड़ गया था, इतने जमा किए हैं और लिख करके गए थे कि हम मरेंगे तो इसको पैसा दे देना चाहिए। तो सोचा क्यों नहीं, जितना जल्दी मर जाए हमारा पैसा हो जाए उसी से। तो उनको काटा रात में, और इसके बाद हल्ला किया, कुछ लोग जूटे, फिर पुलिस आई, लगे देखने वो हल्ला क्या आए, रो रहा था बनावटी, हमारे गुरु जी को मार दी, डाकू चोर मार दी, कर दी वो कर दी, लेकिन उसके वस्त्र पर कुछ छींटा ऐसा लगा था कि वो फब्बारा का छींटा था। तो पुलिस ने पूछा कि तुम पर कैसे खून लगा, तो कहा तो लोग मार रहे थे तो मैं बचा रहा था, ये कर रहा था, कर रहा था। वो लोग तुमको लोग नहीं मारे? अरे नहीं, हमको नहीं मारे, हाँ ऐसे मेरे गुरु जी को मार दिया। तब तक पुलिस उसी को हथकंड दिया, वो लोग समझ गए बक्सा भी नहीं टूटा था, बक्सा कोई भारी नहीं था, कोई ले जाएगा तो रोड पर क्यों फेंकेगा, वो सारी बात समझ गए। इसको लगे मारने, सवेरे ही मैं पहुंचा था वहां जब वो पकड़ा गया था, बहुत मारे, एक एक बात बक दिया। तो बताइए, जो गुरु जी उसको रखे थे शिष्य बना करके, और ये भी लिख दिए थे कि इसके बाद तुम्हारा धन होगा, लेकिन वो धन रखा क्यों? प्रश्न तो ये है, नंदलाल जी के ये सोचे होंगे क्यों धन रखा, क्यों नहीं मंदिर में दे दिया? तो चेला उसको मार दिया, मधुरा का है। धन कमाने वाले कमा रहे हैं, संचय कर रहे हैं, लेकिन धन ले लेने वाले भी देखते रहते हैं, अच्छा कहाँ घूम रहा है, कहाँ जा रहा है। तो इसमें लिखा गया है कि न देयम, जो धन दे नहीं है, जिसको दान में नहीं दिया जाता है, और न उपभोग्यम, और न तो भोग किया गया, लोभियों के द्वारा जो दुख संचितम, बड़े दुख से संचित किया जाता है, वह धन दूसरे के पास चला जाता है। भुगते तदपि तत्चान्यम, उसको दूसरा भोगता है, और दूसरा ले जाकर के संचय करे तो उसको मारकर तीसरा भोगता है, और वो अभी संचय करे तो चौथा भोगता है। इसी तरह मार मार करके बस संचय चलता रहता है, तो धन कई लोगों को मरवा देता है। दान और भोग से विहीन धन कई लोगों की जान लेता है। और खा पी करके यदि खत्म कर दिया गया तब मधुआ क्या करेगा, या दान देकर के खत्म कर दिया जाए तब मधुआ नहीं लगता है। तो मधुआ युवा अर्थ भी मधु असली बात। और कोई पूछे कि भाई कैसे पता लग जाता है मधु छुड़ाने वालों को, कैसे पता लग जाएगा, कोई कहे कि हम ठीक है धन का दान नहीं करेंगे, भोगे भेंगे नहीं, हम छिपा करके रखेंगे, कैसे कोई ले लेगा। तो इस पर भगवान कहते हैं कि अर्थवीत वो मधु छुड़ाने वाला जो चोर है चाहे धन लेने वाला है वो पूरा जानता है, अर्थवेत्ता वो जानता है, लक्षण से पता लगा लेता है। लक्षण क्या है, लिंग गई, लक्षण से पता लगा लेता है। क्या लक्षण होता है, जब कोई आदमी कहीं धन रखता है तो उस स्थान को बड़ा सुरक्षित रखता है, और कभी कभी बच्चों से चाहे किसी से भी कह देता है उन्हें मत जा, उन्हें ठीक नहीं, तो उसे तो एक क्यों मना कर रहा है उधर मत जा, उधर कहीं कोने में रखा हुआ है बक्सा में चाहे वो छोड़ दीजिए उसमें कुछ नहीं है, तो उसे तो कुछ नहीं मतलब ओ जरूर कुछ है, इस तरह से पता लगता है। और जो स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर इधर उधर जो चाई रहते हैं चोर रहते हैं, वे लोग लोगों को देखते रहते हैं, जो बढ़िया कपड़ा पहन कर जाते हैं खुद जीत जानते हैं कि मतलब इनके पास कुछ मधु हो सकता है, तो पता लगाते हैं देखते रहते हैं। और वो आदमी कभी कभी हाथ रखता है पैकेट पर, कभी ऐसे कभी कुछ, और अभी पेशाब करके आया है तब तक तुरंत बाथरूम जाता है, तो समझ जाते हैं कि वो पेशाब करने नहीं गया है, इसके पास कुछ है, तो उसको देखने गिनने संभालने के लिए गया। तो इस तरह से मिला करके जैसे तैसे वो मधुवेता न अर्थवीत वो जानते हैं धन को, जैसे मधु छुड़ाने वाला मधुमक्खियों के व्यवहार से जान जाता है। कहीं पहाड़ की गुफा है या पेड़ है खोड़हर है तो उसमें मधुमक्खियों का आना जाना लगा रहता है, देखता है तो यहाँ मधुमक्खियां आ रही हैं जा रही है, मधु लग चुका है। अगर मधुमक्खियां वहां से सीधे निकले और चली जाए दूसरी जगह तब जान जाता है कि यहाँ अभी लगा हुआ कम है मधु, अभी इकट्ठा कर रहे हैं। और जब इकट्ठा हो जाता है मधु तो मधुमक्खियां जाती नहीं है, वही मर्रा मर्रा करते रहती है, तो समझ लेता है अब पक्का मधुकोश लग गया। तो कुछ मधुआ तो ये भी देखते रहते हैं कि अब बैंक में कितना बड़ा छाता लगा हुआ है, तो रजिस्टर भी देखते हैं। वहां बड़े चलाक होते हैं चोर लोग, खुद ही खाता खोल देंगे उसमें और देखते रहते हैं अकाउंट नंबर और सब, और तब कोई न कोई उपाय करते हैं कि अब कैसे मधु छुड़ाया जाए। मधु छुड़ाने में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि मधुमक्खियां मारने लगती है, काटती है दौड़ने के लिए, तो वो पूरा पूरा उपाय जान जाता है कि इस तरह से इसको छुड़ाना। अच्छा मान लीजिए केवल दमाद है, किसी आदमी को लड़का नहीं है केवल दमाद है, तो दमाद भी अब पूरा पूरा पैतरा लेने लगता है मधु छुड़ाने के लिए, और ससुर के जीवित रहते हुए उस सास और ससुर भले भीख मांगे आज से लेकिन उसको अपने मधु से काम है। और हम लोगों की दशा संसार में ऐसी है वास्तव में, मधुमक्खी जैसे संचय करना संचय करना संचय करना। तो खैर कोई बात नहीं, गृहस्थ कुछ कर सकता है लेकिन उसको सजग रहना चाहिए। सन्यासी आदि को तो कोई प्रश्न ही नहीं, जब रोटी एक टाइम के बाद नहीं रखना है तो मधु कहां से रखे, मधु माने मनी इज हनी, मधु माने पैसा है, पैसा ही मधु है। कई बार तो ऐसा हो सकता है वास्तव में, आप किसी आदमी को मधु खाने के लिए दीजिए तो कह देगा नहीं हमको दो चार रुपया दे दीजिए हमें, वो तो उससे ज्यादा स्वीट है, पैसा मधु से ज्यादा प्रिय है, प्राण से भी अधिक प्रिय है, मधु तो छोड़ दीजिए। अभी प्राण दे देता है लेकिन धन नहीं देता है, मर जाता है, कितने लोग धन बचाने में मर जाते हैं, कल को देखा गया धन बच गया लेकिन वे मर गए। और ज्यादातर तो यही होता है, धन भी गया वो भी गया। इसलिए धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा लता पहनना या गृह मकान बनाना जो है लड़कों का विवाह शादी आदि करके पूरा हो जाए, अथवा दान में चला जाए। एक तो ये शिक्षा है, और दूसरी शिक्षा है सुदुखोपार्जित वित्त आशा साना गृह आशीष मधुहे वाग्रतो भूते जतिर्वय गृह में धीना। श्रीधर स्वामी उस श्लोक की टीका में लिखे ननु सुगुप्तम धनम कथम अन्य ज्ञास्यति हरिष्यति तत्रा अर्थवित लिंगई लिंगई अर्थम उपायम तद उपायम चवेति इति अर्थवित जथा मधुआ तरु कोटरादि गतम मधुवेति मधुमक्षिका नाम गमना गमने न मधुमक्खियों के गमन आगमन तो जान जाता है कि यहाँ पर है। तो स्व उद्यमम बिना भोग संभवती अत्रापि सैव गुरु वृत्ति है। एक दूसरी शिक्षा है सन्यासियों को कि उद्यम के बिना भी, बिना प्रयास के भी, बिना काम किए भी धन मिल जाता है, भोग मिल जाता है। जैसे मधुआ को तो मधुमक्खियां इतना दुख सहसा करके मेहनत करके मधु इकट्ठा करती हैं और उसको छुड़ा लेता है मधुआ। इसी तरह से कुछ लोग बहुत दुकान करके, खेती करके, व्यापार करके या नौकरी करके बहुत दुख से धन इकट्ठा करते हैं। क्या आशा रखते हैं? आशा सानम गृहाशीष कि अपने घर गृहस्थी में सोचते हैं ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, बहुत बहुत आशा रखकर धन कमाते हैं। लेकिन उस धन को खाता है पहले सन्यासी। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन आप देखे हैं गांव घर में सब जगह कोई कितना भी धन कमावे लेकिन उसको पहले भोग लगाता है सन्यासी ब्राह्मण जति ये सब। जैसे मान लीजिए आप गल्ला इकट्ठा किए, गल्ला इकट्ठा किए तो तक उसको कहते हैं क्या कहते हैं अंगऊ। अंगऊ का मतलब होता है अग्रभूख, आगे पहले काढ़िए। बहुत मेहनत करके कमाए लेकिन सबसे पहले खाएगा कोई दूसरा, चाहे पुरोहित जी खावे, चाहे साधु, चाहे कोई। नियम भी है पहले खाता। और गृहस्थों के यहाँ नियम बनाया गया है कि जब भोजन बने तो उनको पता लगाना चाहिए कि हमारे गांव में कोई जति सन्यासी या ब्रह्मचारी तो नहीं है, तो पकाए हुए अन्न से उसको पहले तृप्त करके तब खाना चाहिए। अगर पहले खा लिया गृहस्थ तो उसके लिए देखिए क्या दंड है, जतिश च ब्रह्मचारी च पक्कान स्वामिनो विभव तयोर अन्नम अगत्वा चु भुक्त्वा चंद्रायणम चरे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये पके हुए अन्न के पहला स्वामी है, इनको बिना दिए जो गृहस्थ खा लेता है उसको चंद्रायण व्रत करना चाहिए। चंद्रायण व्रत का मतलब होता है चंद्रमा जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे उसको आहार कम कर देना चाहिए। दंड होता है, पाप लग गया उस पर। ये सन्यासी ब्रह्मचारी कमाते नहीं है, समाज के सबसे उपयोगी जीव ये है, प्रचार करते हैं, भक्ति करते हैं, तो कुछ कमाए हो तो सबसे पहले उनको खिलाना चाहिए। लेकिन जो गृहस्थ सन्यासी को ब्रह्मचारी को बिना खिलाए खा लेता है उसको बहुत पाप लगता है। ऐसे वैदिक मर्यादा से, लोक मर्यादा से भी सन्यासी को पहले भोजन मिल जाएगा, इसलिए काम नहीं करना चाहिए, केवल भक्ति करनी चाहिए। मधुहा युवा अग्रतो भूखते, और ये देखा भी गया है कि साधु वधु पहले ही खा लेते हैं। हमने देखा है कई बार साधुओं को इस तरह से सम्मानित करते हुए, अपने खास घर में ही देखा कि सब संबंधी आए हैं, विवाह है और है सब है, लेकिन साधुओं को पहले भोजन वो भी शुद्ध घी का, और बाकी लोग डालडा पीछे चलता है। तो भगवान की व्यवस्था है, भोजन मिल जाता है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, भजन में लगे रहना चाहिए। ये भजन के कारण लोग आदर करते हैं, साधु होने के कारण आदर करते हैं, तो आगे वे संधि को खिलाएंगे कि साधु को खिलाएंगे बताइए। दुल्हा बनकर के एक आदमी आया है, संधि आया है, लेकिन वो बेचारे पीछे खाते हैं। वो भी जानता है कि ठीक है साधु महात्मा मिलता है ना, भजन करने पर मिलता है, इसलिए साधु को चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यह शिक्षा मधुरा से लेनी चाहिए। इकट्ठा कौन किया और पहले ही भोग लगा दिया, वो मधुरा मुसहर चाहे कोई मधु छुड़ाने वाला खा गया तो मिलेगा भगवान की दया से। तो दो दो शिक्षा मिली, धन का दान कर देना चाहिए अथवा उसे भोगना चाहिए, बहुत संचय नहीं करना चाहिए नहीं तो दुख होता है। और मधुआ के एक आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए कि जो भक्त है, भगवान के भक्त है, त्यागी है, उनको पहले ही मिल जाता है भोजन, को चिंता नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण जय श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्राम्य गीतं शृणुयात् जतिर्वनचरः क्वचित्, शिक्षेत हरिणात् बद्धात् मृगयोर्गीतं मोहितात्। नृत्यवादित्र गीतानि जुषं ग्राम्याणि जोषितान्, आसां क्रीडन को वश्यः ऋष्य श्रृंगो मृगीषुतः। जिह्वयाति प्रमाथिन्य जनो रस विमोहितः, मृत्युमृच्छत्त सद्बुद्धिः मीनस्तु बडिशैर्यथा। इन्द्रियाणि जयन्त्यासु निराहारा मनीषिणः, वर्जयित्वा तु रसनां तन्निरन्नस्य वर्धते। आवज्जितेन्द्रियो न स्यात् जितान्येन्द्रियापमान्। न जयेद् रसनं यावत् जितं सर्वं जिते रसे, पिङ्गलानां विश्यासीत् विदेह नगरे पुरा। तस्या मे शिक्षितं किञ्चित् निबोधा नृपनन्दना, सा स्वर्णेकदा कान्तं संकेता उपनिष्यति। अभूतकाले बहिर्द्वारि विभ्रतिरूपमुत्तमम्, मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान् पुरुषर्षभ। तान् शुल्कदान् वित्तवतः कान्तान् मेमेऽर्थ कामुका, आगते स्वपयातेषु सा संकेतोपजीविनी। अप्यन्यो वित्तवान् कोऽपि मामु पश्यति भूरिदः, एवं दुराशया ध्वस्तः निद्रा द्वार्यवलम्बति। निर्गच्छन्ति प्रविशति निशीथं समपद्यत, तस्या वित्ताशया शुष्यात् वक्राया दीनचेतसः। निर्वेदः परमो जज्ञे चिन्ता हेतुः सुखावहः, तस्या निर्वीणचित्ताय गीतं शृणुजथा मम। निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा तस्या निर्वीर्यचित्ताया गीतं शृणु यथा मम निर्वेद आशा पाशानां पुरुषस्य यथा ह्यसि नह्यंगा जात निर्वेद देहबंधं जिहाससि यथा विज्ञान रहितो मनुजो ममतामृत पिंगलो वाच अहो मे मोह विततिं पश्यता विजितात्मनः या कांता दशतः कामम् कामये जेन बालिशा शन्तं समीपे रमणं रति प्रदम् गीता प्रदम् नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःख भयादिशोका मोह प्रदं तुच्छ महां भजज्ञा अहो मयात्मा परितापितो वृथा सांकेत वृत्त्याति विगर्ह्य वार्तया स्त्रैणान्न राज्ञा अर्थपृशोऽनुशोच्यात् त्रैणात्म राज्यार्थ त्रिशोनुशोच्यात् कृतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छति जदस्तिभिर्निर्मित वंश वंश्या स्थूणं त्वचारोम नखैपि नद्धाम् शरं नवद्वारमगारमेत दिनमूत्रपूर्णं मदुपैति कान्या विदेहानां पुरे यस्मिन् अहमेकैव मूढधिः यान्यम् इच्छन्त सत्यस्मात् आत्मदात काममच्युता सुहृत् प्रेष्ठतमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणा तं विक्रियात्मनैवाहम् रमेणेन यथा रमा कियत् प्रियं ते व्यभजन् कामाये कामदानरः आद्यन्तवन्तो भार्यायाः देवा वा कालविद्रुतः नूनं मे भगवान् प्रीतः विष्णुः केनापि कर्मणा निर्वेदोऽयं दुराशाया जन्मे जातः सुखावहः मैवं स्युर्मन्दभाग्यायः क्लेशा निर्वेदहेतवः येनानुबन्धं निर्हृत्य पुरुषः सममृच्छति तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्य संगतः त्यक्त्वा दुराशः शरणम् व्रजामि तमधीश्वराम् संतुष्टा श्रद्दधति संतुष्टा श्रद्दधत्येता यथा लाभेन जीवति विहरामं नैवाहम् आत्मना रमणेन
वै
संसारकूपे पतिता
विषयैर्मुषितेक्षणाम्
ग्रस्तं कालाहिनात्मानम् पुण्यस्त्रातुमभीश्वरः आत्मैव ह्यात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यथाखिला निर्विद्येत यथा जदाखिला अप्रमत्तैदं पश्येत् ग्रस्तं कालाहिना जगत् ब्राह्मणवाच एवं व्यवसितमतिः दुराशां कान्ततर्षजा चित्तोपशममास्थाय सज्जाम् उपविवेशसा आशा हि परमं
दुःखम्
नैराश्यं परमं सुखम्
यथा
संसिद्धकान्ताशाम् सुखं सुस्वापपिङ्गला ग्राम्यगीताम् ग्राम्य गीत स्त्री पुरुष को प्रिय परस्पर प्रिय लगने वाला गीत ना ना श्रुया सुने कभी ना सुने जति ही सन्यासी वंचरः वंचारी वनप्रस्थ क्वचित कभी भी शिक्षेता यह सीखना चाहिए हरिणात हरिण से बद्धात जो बांधा जाता है मृगयो हो बहेलिये के गीत मोहिता गीत से मोहित हरिणात शिक्षितम आह ग्राम्यति अब हरिण से जो शिक्षा मिलती है उसको भगवान बता रहे हैं क्वचिदपि जति ही वनचरः ग्राम्य गीतम न श्रुणुयात् सन्यासी और वानप्रस्थी को चाहिए कि किसी भी स्थिति में ग्राम्य गीत न सुने ग्राम्य गीत का अर्थ होता है ग्राम्याणाम विषयणाम गीतम दंपति प्रत्यादि वर्णन रूपम जिन गीतों में स्त्री को प्रसन्न करने वाली बात कही जा रही हो या स्त्री के द्वारा पुरुष की बात पुरुष को प्रसन्न करने वाली बात कही जा रही है उसको ग्राम्य गीत कहते हैं। ग्राम्य मतलब विषय और विशेष करके विषय में स्त्री पुरुषों का जो आपस में आकर्षण है एक दूसरे के प्रति जो मोह है अहम ममेति है उसको ग्राम्य कहते हैं। इस संसार में बहुत से ग्राम्य गीत है जिनको सुनने के बाद पुरुष स्त्री में आसक्त हो जाता है और स्त्री पुरुष में आसक्त प्राय आपने तो कुछ ग्राम्य गीत तो सुना ही होगा सिनेमा का गीत उसमें प्राय स्त्री पुरुष गाते हैं एक बार स्त्री गा लेती है तो दूसरे बार पुरुष गाता है पुरुष गा लेता है तो फिर स्त्री गाती है ऐसे है ना प्राय है तो ग्राम्य गीत नहीं सुनना चाहिए सन्यासी और वानप्रस्थी वनचरह मतलब वनप्रस्थ जो वन में रहता है कोई कह रहे भाई कभी हित गनावे विवाह शादी का अवसर हो तो सुन लेना चाहिए अब क्या किया जाए व्यवहार निभाने के लिए तो कहते नहीं नहीं क्वचित कभी भी न सुने किसी भी स्थिति में न सुने समझ गए ना कि टीवी बिल्कुल नहीं देखना चाहिए सन्यासी और वंचर या ब्रह्मचारी कभी नहीं देखना चाहिए और ग्राम्य गीत वास्तव में गृहस्थों को भी नहीं सुनना चाहिए लेकिन क्वचित कभी कभी वो सुन सकते हैं क्योंकि बिना सुने काम नहीं चलेगा कहीं जाएंगे किसी संबंधी के यहाँ विवाह शादी है तो उधर लाउड स्पीकर दहाड़ेगा, तब तक स्त्रियाँ गीत गाने लगेगी गाली वगैरह, और दूल्हा को प्रसन्न करने के लिए नाच की भी व्यवस्था होती है, तब क्या करेगा? तो गृहस्थ बाध्य है कभी कभी सुनने के लिए, फिर वह अभी बाध्य होकर के ही सुने। यदि वह स्वतंत्रता फील कर रहा है कि नहीं सुनूंगा फिर भी काम चल जाए तो नहीं सुनना चाहिए, ग्राम्य गीत नहीं सुनना चाहिए। क्या हो जाएगा उसको सुनने से? होगा क्या? विनाश होगा, जैसे हरिण का विनाश हो जाता है गीत सुनने के कारण। सीखना चाहिए किस तरह विनाश हो जाता है, बचना चाहिए। हरिणा बद्धा गीत मोहिता, हरिण है गीत मोहित हो जाता है, वन में जा करके बहेलिया गीत गाता है, गीत गाने वाले को ले जाता है अपने साथ, बहुत सुंदर गीत। और ऐसा हमने सुना है कि गीत गाने वाला जाता है, बाजा बजाने वाला बढ़िया, और बहेलिया पहले से उसका शेयर निश्चित कर देता है कि अगर कोई हरण आएगा हमारी पकड़ में तो आपको उसमें से इतना देंगे, चलिए गाइए। तो बहेलिया तो प्राय गाना जानते नहीं है, तो गायक को ले जाते हैं, बहुत सुरीले कंठ में किशोर अवस्था के बालक या बालिका बहुत अच्छा गाते हैं, या बाजा बजाने वाला बांसुरी बजाने वाला तो ले जाते हैं, तो उनके गीत को सुनकर हरिण मोहित हो जाता है, मृगयो गीत मोहित, मृगयो कहते हैं बहेलिया को, बधिक उस गीत से मोहित हो जाता है हरिण, और जब ही निकट आता है तो जाल लगाए रहता है, उसमें फंस जाता है, चाहे उस पर बाण लगता है, तो इस प्रकार बद्धा बद्धात गीत सुन करके हरिण बंध जाता है, मारा जाता है। तो ऐसे आपत्ति में विपद में पड़े हुए हरिण से ये सीखना चाहिए कि सन्यासी और वानप्रस्थी को कभी भूल कर भी ग्राम में गीत नहीं सुनना चाहिए। यह हमें सीखा भगवान कह रहे हैं, हरिण भी गुरु है ना, इस तरह विपत्ति में पढ़ करके सीखा है, वो सिखाया क्या, उसको देख करके शिक्षा ले लिए। हरिण की आसक्ति गीत में बहुत होती है। मैं कई बार ऐसा सुना हूं, जैसे तानसेन के गीत के बारे में, बैजू बाबा के गीत के बारे में, और हरिदास स्वामी जिन्होंने प्रकट किया है, बाकी भी हरि जी को, तो हरिदास स्वामी का शिष्य था तानसेन, बहुत प्रसिद्ध गायक ग्वालियर का, वह गाता था तो हरिण आ जाते थे जो बगीचे में रहते थे आसपास, और ऐसे अपनी माला निकाल करके लोग डाल देते थे उनके गर्दन में, फिर भी सुनते रहते, पोसे हुए नहीं, निकट के दूसरे हरिण आ जाते थे, इतने मोहित होते थे। तो जब हरिण इस तरह गीत पर मोहित होता है तो बांधा जाता है, भूल जाता है कि यह बहेलिया है, हमको बाण मारेगा, हमको बांध कर ले जाएगा, इस बात को पूर्णतः भूल जाता है। तो इस प्रकार से गीत का यह असर होता है। तो खास करके सन्यासी को ये डीम डैम तबला हारमोनियम पर गीत नहीं सुनना चाहिए, ग्राम्य गीत नहीं सुनना चाहिए। श्रीपद श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि भगवत गीतं तु श्रुणया देव, भगवत गीत सुनना चाहिए, मतलब भगवान के विषय में कुछ गान हो रहा है तो उसे जरूर सुनना चाहिए, वह तो भगवान में प्रेम उत्पन्न करता है, लेकिन ग्राम में गीत नहीं सुनना चाहिए। सिनेमा आदि का गीत है, लौकिक गीत है, और इधर लोग गाते हैं बिरहा लुरखी, ये सब ग्राम में गीत, और भी नाना प्रकार के राजनीतिक, पहले तो प्रचार करने में भी लोग बहुत बहुत गाते थे, मोहर मरीहा भैया मोहर मरीहा यह करीहा वह करी, लेकिन सरकार ने ठीक किया है कि अब ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी बात संसार के बारे में गाई जाए, वो ग्राम गीत, विशेष करके स्त्री पुरुष के चित्त को एक दूसरे के प्रति आसक्त करने में जो सहयोग करे, उस गीत को तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। भगवत गीत सुनना चाहिए। ग्राम्यम विषय समूहम सेवन्ते इति ग्राम्य विषयंग तेसाम गीतम। यह जो ग्राम्य गीत, गीत शब्द नहीं दिया गया है, ग्राम्य दिया गया है, तो विशेष रहस्य व्यावर्त कत्वा भगवत गीतम की व्याख्यातम। ग्राम्य शब्द दिया गया है गीत के पहले, इसीलिए सिद्धार्थ स्वामी जी कहते हैं ग्राम गीतम न सुनिया, परंतु भगवत गीतम तो सुनिया, भगवत गीत सुनना चाहिए। जैसे महामंत्र हो रहा है, कोई भजन हो रहा है, बहुत सुंदर बाजा बज रहा है, नृत्य हो रहा है, तो इसमें जरूर भाग लेना चाहिए, तो संसारिक गीत नहीं सुनना चाहिए। एक बहुत सुंदर उक्ति लिखे हैं एक टीकाकार, इसमें कहां पर मैं पढ़ा छूट गया, कि हरिण कहता है जब बहेलिया बाण मारता है हरिण को, तो हरिण उस गीत में इतना आसक्त होता है कि बाण लगने पर वो कहता है कि हे बहेलिया, ठीक है तुमको, तुम उसको मार दिया, लेकिन एक काम करना, तुम कोई बाजा बनाना तो उस पर मेरा चाम महना, और मेरे आंत से, तात से उस ढोलक को या तबला को महना, जिससे कि मैं सुनता रहूं उस समय भी गीत मरे हुए चमड़े से। ठीक है, मेरा वध कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा चाह में फिर से ढोलक में लगना चाहिए, जो गीत हो रहा था वैसा ही गीत हो। इतनी आसक्ति होती है गीत में, इसलिए मैं कहीं पढ़ा लिखा हुआ पता नहीं कहाँ है, छूट गया। इस तरह की बात कहा, हरिणी का प्रसंग है, इसलिए हरिणी के पुत्र श्रृंगी ऋषि का यहाँ स्मरण हो रहा हुआ, इसलिए भगवान दत्तात्रेय ऋषि श्रृंग को भी गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और उनसे जो शिक्षा मिलती है उसको कह रहे हैं। नृत्य वादित्र गीतानि जुसन ग्राम्याणि जोषितान आसाम क्रीडन को वश्य ऋष्य श्रृंगो मृगी सुतः। हरि शब्दात एव हरि सुतः ऋष श्रृंगो पि गुरु ज्ञातव्य क्या नृत्य वश्यो बभुए। ऋषि श्रृंग मृगी सुतः, एक ऋषि श्रृंग नाम के मुनि हो गए हैं, वो मृगी से उत्पन्न हुए थे विभांडक ऋषि द्वारा। विभांडक ऋषि पिता थे और वो एक तपस्वी थे, लेकिन मृगी से उन्हें पुत्र हुआ था, तो उसका नाम हुआ ऋषि श्रृंग। उसके सिर में सिंह था, हरिणी जैसा छोटा सा, तो मृगी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, कभी स्त्री देखा ही नहीं था, मनुष्य में जो स्त्रियां होती उसको कभी देखा नहीं था, सपने में भी कभी नहीं, तो जानता ही नहीं था कि स्त्री कोई चीज होती है, इतना विरक्त था। प्राय पशुओं के साथ ही रहा, ऋषि से पढ़ा लिखा सब, लेकिन एक घटना ऐसी है कि एक बार ऐसा कहा गया कि अगर ऋषि श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी कहिए उनको, ऋषि श्रृंग ऋषि विवाह करेंगे तब वर्षा हो सकती है, तो इनको विवाह के लिए बाध्य करने के लिए उस देश की रोमपाद राजा थे एक, महाराज दशरथ के सखा थे, तो वे भेजे कुछ वेश्याओं को गीत गाने के लिए उस आश्रम के पास, गाने के लिए, नाचने के लिए, बजाने के लिए, तीन तीन काम के लिए। नृत्य वादित्र गीतानि, तो वो वेश्याएं नवजुति स्त्रियां लड़कियां अपने को बिल्कुल पुरुष के रूप में सजा करके गई थी, नहीं तो उनके पास वो लड़का आता नहीं, इसलिए पहले लड़का बन करके गई और गाने लगी, खेलने लगी, गाने लगी, नाचने लगी, तो भी लड़का था, सोचा कि लड़के हैं, खेलने लगा, नाचने लगा, गीत सुना, वादित्र सुना, नृत्य देखा, तो देखा तो धीरे 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 उसका आकर्षण हो गया, जो कि सपने में स्त्री नामक चीज नहीं जानता था, महाविरक्त था वह, स्त्रियों के प्रति आकृष्ट हो गया, इतना नहीं आसाम क्रीड़नक उनके हाथ का खिलौना बन गया, स्त्री के वश में हो गया और वह स्वयं ही स्त्री के लिए विकल हो गया। तो यह शिक्षा मिलती है कि ग्राम में गीत कभी नहीं सुनना चाहिए, और उसमें भी स्त्री गा रही हो तो और अधिक नहीं सुनना चाहिए, यहाँ तक कि भगवान का गीत भी स्त्री गा रही है तो नहीं सुनना चाहिए। यह स्पष्ट है, आजकल तो कैसीटें बिक रही हैं जिसमें अधिक से अधिक स्त्रियां ही गाती, दिन पर दिन मनुष्यों का रोग बिगड़ता जा रहा है, अब चिकित्सा से बाहर की बात होती जा रही है। हम कई बार देखते हैं कुछ भक्त भी प्रभुपाद जी का कैसेट न लगा करके वेश्याओं का कैसेट लगा देते हैं और सुनते जाते, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी श्रेष्ठ भगवत भक्त के मुख से गीत सुनना चाहिए भगवान के बारे में, उसका दूसरा असर होता है। स्त्रियों के मुख से गाया हुआ गीत नहीं सुनना चाहिए, भले वो भगवत गीत भी हो तब भी, और फिर ग्राम में गीत का तो कहना नहीं, ग्राम गीत तो पुरुषों के मुख से भी गाया गया तो नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो जैसे हरिणा मारा जाता है वैसे मरेंगे, अथवा जैसे ऋषि श्रृंग ऋषि जा करके विवाह की और स्त्रियों का खिलौना हो गया वैसे हो जाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बंचारी या सन्यासी जीवित भी रहे परंतु स्त्रियों के हाथ का बानर बनकर रहेगा, अगर सुना इस तरह का गीत आदि क्रीड़नक, यह शिक्षा हरिण से मिलती है और हरिण सूत्र से। जुसल ग्राम्याणी जोशिता, जोशिताओं के ग्राम्याणी नृत्य वादित्र गीतानी जुसन, तो विभांडक के पुत्र और मृगी के पुत्र ऋषि श्रृंगी ऋषि जब स्त्रियों के मुख से सुने उनका गान बजान और सुने, वो भी ग्राम्याणी, एक तो स्त्रियां गा रही थी और उस पर भी श्रृंगार रस की सीमा हो गई थी। जोशिताम ग्राम्याणी गीतानी, किसी भी उनके अंदर काम वासना उत्पन्न हो गई, जबकि जानते भी नहीं थे कि स्त्री किस चिड़िया का नाम, महाभारत में बहुत विस्तार से कथा दी गई, तो मृग से यह सीखना चाहिए। अरे अब मछली से क्या शिक्षा मिलती है यह बता रहे हैं, रसा शक्ति नाश हेतु ही थी मीनत शिक्षितम इत्यादि, स्वाद में जब आसक्ति हो जाती है तो वह मनुष्य का नाश कर देती है, यह शिक्षा मीन से मिलती है। जिह्वयाति प्रमाखिन्या जनो रस विमोहितः मृत्युम रिच्छद असद्बुद्धि मीनस्तु बडिशै जथा। जिह्वयाति प्रमाखिन्या, जिह्वा अति प्रमाथी है, प्रमाथी का अर्थ है मथ देने वाली, बेचैन हो जाती है, ऐसा आप लोगों का अनुभव है सबका, मान लीजिए आंख में देखने की लालसा होती है तो आंखें खुल जाती हैं, कान जैसा रहता है वैसा ही रहता है, नाक जैसा रहती है वैसा ही, लेकिन जिह्वा से लार निकलने लगता है। अब इस इंद्रिय की दुर्दशा देखिए, लार टपकने लगता है, और किस लिए, भूख के कारण नहीं, स्वाद का स्मरण करके जिह्वा से पानी चूने लगता है, इसलिए अति प्रमाथी है। इसी जिह्वा के लिए इतने इतने होटल दुकान क्या क्या छन रहे हैं, पकौड़ी जिलेबी यह वह, आप देखते जितने पकवान हैं चाय से लेकर के और भी खीर तक, जो भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं लोग खाने के लिए बनाए हैं मनुष्य समाज में, जो कि पशुओं के समाज में कोई बनावटी चीज नहीं। अभी गाय को छोड़ दीजिए, घास चरकर तृप्त हो जाएगी, नमक नहीं मांगेगी, ये नहीं कहेगी थोड़ा एक कवर पर एक अचार दो, खा लेते हैं। कुटी भी काटते हैं तो क्या देते हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ हरी हरी और पुआल बस। और उसमें ऐसा तो नहीं है कि एक कप चाय भी दे दिए गाय को सवेरे सवेरे, भाई दे दो गर्मी काम तो चाय दो, ये दो, ऐसा करो वैसा करो, चटनी अचार, यह किसके लिए हो रहा है? क्योंकि जिह्वा अति प्रमाथी है, प्रमथ देती है। यहाँ मथने का मतलब है आत्मा को, मन को विकल कर देती है कि ये चीज जुटाओ, ये चीज जुटाओ, हमको चाहिए, भले पेट के लिए हानि करे। जीवा को पेट से मतलब नहीं, हमको चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और जो इस तरह जीवा के मांग को पूरा करने में लगा रहता है, उसको जीव चटोर कहते हैं। और खाने में देखिए, जीवा के संतुष्टि के लिए आदमी कभी कुछ चाटता है तो मिर्चा काटता है, थोड़ा तीत भी लगे, थोड़ा मीठा भी चाहिए, थोड़ा अम्ल खाता भी चाहिए, तीता चाहिए, खाटा चाहिए, मीठा चाहिए, कसाय चाहिए, वो भी कई वैरायटी का। जिह्वा बहुत बलवान है, तार मध्य जिह्वा रति लोभमय सुदूरमति, ताके जेता कठिन संसार, इतनी बलवान। तो इस जिह्वा के कारण यह जन्म मृत्यु में पड़ा हुआ जिह्वा ऐसे ही जन्म मरण में पड़ा है, और उस पर भी इसको जिह्वा मिली है। शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रियता है काल, तार मध्य जिह्वा अति लोभ मय सुदूर मत। तो इससे रस विमोहित, रस के विषय में भ्रमित रहता है, रस के प्रति बहुत आकृष्ट रहता है। रस मतलब स्वाद, खट्टा मीठा तीता आदि। तो उस स्वाद के कारण मृत्यु मृत्यु, यह मृत्यु को प्राप्त होता है। जिह्वा के कारण आदमी मारा जाता है। ऐसे भी रोग दुख जो भी होते हैं वो गलत खाने से होते हैं, तो वो मर जाता है। तो असद बुद्धि, उसे पता नहीं चलता है कि मैं जिह्वा के फेर में पड़ा हूं तो गलत कर रहा हूं, उसकी बुद्धि जिह्वा के वेग को नहीं समझ सकती। वह उसी तरह से मारा जाता है जैसे मीन बॉडी सही, जैसे मछली बंसी के द्वारा मारे। मैं पहले कह चुका था, लोग जाकर के तालाब में या नदी में बंसी लगाते हैं, बड्डिश कहते हैं संस्कृत में, और बड्डिश की परिभाषा यहाँ दे रहे हैं। बड्डी सही आमिष लिप्त लोह कंट कई, आमिष मतलब मांस से लिप्त लोहा का कांटा रहता है, और जिह्वा के कारण वो बेचारे बेचारा मछली खाने जाता है और बस मारा जाता है, पानी से बाहर आना पड़ता है, छटपटा करके मरता है। तो इस तरह से जिह्वा के कारण मरण हो जाता है, बहुत प्रकार के रोग दुख भी होते हैं, और कभी कभी तो सचमुच मर जाता है, खा करके मर जाता है। खाने बिना उतना आदमी नहीं मरते हैं जितना खाकर मरते हैं, भोजन की गड़बड़ी से जितना आदमी मरते हैं उतना अकाल पड़ने पर नहीं मरते। यह बिल्कुल शोधित विषय है, देखा हुआ विषय है। हैजा आदि रोग होता है वो गड़बड़ खाने से होता है, उपवास करने से किसी को रोग नहीं। तो जिह्वा के कारण मारा जाता है। किस तरह से जिह्वा दुर्जय है इसको बता रहे हैं। इंद्रियाणि जयन्त्यासु निराहारा मनीषिणः, यदि मनीषी जन विद्वान जन निराहार रहते हैं तो अपने इंद्रियों को जीत लेते हैं। इंद्रियाणि जयन्ति और भी आसु बहुत जल्दी, अन्य इंद्रियों को जीता जा सकता है आहार छोड़ देने पर, क्योंकि सभी इंद्रियों को आहार से शक्ति मिलती है। इंद्रियों को जीता जा सकता है। अथवा यह अर्थ है कि अन्य इंद्रियों के जो विषय है, जैसे आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, नासिका का विषय है गंध, अगर इनको आहार न दिया जाए, देखने को न दिया जाए, सुनने को न दिया जाए।